नमस्कार, स्पोर्ट्स स्कैन के आज के संस्करण में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। खेल जगत की तमाम खबरों का लेखा जोखा लेकर मैं हूं नवीन सक्सेना आज के इस अंक में, और इन खबरों पर चर्चा करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है खेल विशेषज्ञ मलय नीरव। मलय, स्वागत है आपका।
धन्यवाद नीरज।
खेलों की दुनिया से, खासकर पेरिस ओलंपिक की दुनिया से इस समय सबसे बड़ी खबर जो हमारे पास आ रही है वो है भारतीय हॉकी टीम की तरफ से। स्पेन को 2-1 से हराकर भारत ने ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है, और 50 साल बाद ओलंपिक में लगातार भारत की ये दूसरी जीत है।
क्या भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया है? 13वां ओलंपिक मेडल, और 50 साल बाद बैक टू बैक ओलंपिक मेडल जीते हैं।
मलय, अब तक की सबसे बड़ी खबर जिसका आज सुबह से हमें इंतजार था, और वो इंतजार हमारा कांस्य पदक में कम तब्दील हो गया है। और अगर बात करें तो आज का जिस तरह से मैच खेला है तो लगता है कि भारत तो गोल्ड मेडल जीतने वाली टीम थी जिस तरह से खेला है।
बिल्कुल, हरमनप्रीत ने माफी मांगी है। देखिए, उनकी ह्यूमिलिटी, उनका जो पूरा कैरेक्टर है, इस बात से झलकता है कि उन्होंने कहा है कि भारत के नागरिकों से मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि हम गोल्ड नहीं जीत पाए, हम स्वर्ण नहीं जीत पाए। लेकिन नहीं जीते तो क्या हुआ, 52 वर्षों के बाद बैक टू बैक ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत ने, कोई मेडल बैक टू बैक जीतकर भारत ने इतिहास रच तो दिया।
मैंने सीधा इस समय जुड़ रहे हैं पेरिस में हमारे संवाददाता महेंद्र सिंह लालस, जो इस समय वहीं पर मौजूद है, उनसे जानते हैं। महेंद्र, किस तरह का माहौल आप देख रहे हैं इस समय टीम में?
नवीन, बहुत ही गौरव का क्षण भारतीय हॉकी के लिए। लेकिन इससे पहले कि मैं आपसे ज्यादा बात करूं
जी,
थोड़ी सी बात हम श्रीजेश क्या बोल रहे हैं वो सुनते हैं। आप थोड़ी देर मुझसे बात करते रहिएगा
जी।
मैं जो श्रीजेश इस वक्त बोल रहे हैं आपको और तमाम श्रोताओं को सुनवाता हूं
जी।
कैप्टन So the things didn't go the way you wanted. How did you turn things around and score 10 goals led by example? How do you turn things around?
ये हरमप्रीत है
जी।
बेस्ट कोचेस, बिकॉज ऑफ देम आई वाज हियर, एंड आई थिंक या द वर्ल्ड कप जर्नी वाज टफ फॉर मी, एंड इट वाज वेरी हार्ड टाइम फॉर मी, बट ऑनेस्टली माय टीममेट्स, दे आर लाइक the believing in me, and I know I can do better, so I think that's a big part for me, and this is our mantra, so that we trust each other, we stick together, we help each other
जी।
And because of our team, I think
Thank you.
whatever we are achieving, I think it's a great journey, and we just enjoying the life, you know. That's it.
This is Abhijit Deshmukh from Lokman
जी।
My question is to Srijesh. You often speak to your goalposts. What was your conversation with the goalpost today?
See, short that is a goalkeeper sir crazy bit.
पेरिस से समय लगातार संपर्क हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन संपर्क बन नहीं पा रहा है। इस बीच हम सीधा मलय के पास चलते हैं। मलय, श्रीजेश के लिए आज का जो मैच था वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट था।
देखिए, जब श्रीजेश 18 वर्ष की आयु में
जी
हॉकी के मैदान में, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में जब उनका प्रवेश हुआ था, तभी ये लगने लगा था कि ये एक लोहे की दीवार बनकर गोल पोस्ट के सामने खड़ा रहने वाला ऐसा खिलाड़ी है जो अपने बल पर किसी भी टीम को जीतने से रोक सकता है
जी।
और इस तरह से अपनी टीम को जिता सकता है। और जब आज वो खेल को अलविदा कह रहे हैं, संन्यास ले रहे हैं, जब आज उनके एक्टिव स्पोर्ट्स लाइफ की सांध वेला आ गई है, तो आज भी श्रीजेश उसी तरह से एक लोहे की दीवार, मैं तो यूं कहूंगा कि ज्यादा मजबूत लोहे की दीवार के रूप में नजर आए। आज भी जो मैच हुआ, भारत के खिलाड़ियों के लिए बहुत सारी मुश्किलें पैदा की थी स्पेन ने, और श्रीजेश वहां डटे रहे। बिल्कुल, जब तक श्रीजेश थे एक भरोसा था कि अगर श्रीजेश हैं तो गोल नहीं होगा, और ऐसा कई बार हुआ।
मलय, श्रीजेश ने भारत की तरफ से गोल रोके, तो वहीं हरमनप्रीत सिंह ने लगातार धावा बोलते हुए 2 गोल तब्दील कर दिए पेनल्टी कॉर्नर के अंदर, और शायद वहीं पे भारत की जीत का जो था वहां पे पोल जो है गाड़ दिया। वहां
हरमनप्रीत ने तो वो करके दिखाया है कि अगर इस पूरे टूर्नामेंट में आप देखें तो 11 गोल उनकी स्टिक से निकले हैं, और ये बहुत बड़ी बात होती है। और आज भी जिस प्रकार से स्पेन ने बढ़त ले ली थी, उस बढ़त को कम करने के लिए जब पेनल्टी कॉर्नर को उन्होंने जब गोल में तब्दील कर दिया, और एक के बाद एक दो पेनल्टी कॉर्नर को, तो उसके बाद लगने लगा कि हरमनप्रीत आज ये ठान कर आए हैं कि आज तो तमगा लेकर ही जाएंगे, सोना नहीं तो कांसे ही सही।
मतलब विश्व की तीन सर्वश्रेष्ठ टीमों में इस समय भारत का नाम है। भारत भले ही तीसरे नंबर पर है, जिस तरह का खेल भारत ने पूरे टूर्नामेंट पे दिखाया, ओलंपिक पे दिखाया, शायद ही हमने पहले कभी इस तरह का खेल देखा होगा।
बहुत ही शानदार फॉर्म, कम से कम जब से मैं पैदा हुआ हूं और जब से मैं हॉकी फॉलो कर रहा हूं। और मुझे याद है मैं बहुत छोटा था जबकि भारत विश्व कप, एकमात्र विश्व कप अजीत पाल सिंह की कप्तानी में जब भारत ने जीता था, तब से लेकर आज तक। और फिर टोक्यो ओलंपिक में एक तरह से नया इतिहास का एक नया पन्ना, एक नया सूरज खिला, और तब से हमको लग रहा था कि भारत की टीम वापसी करेगी। और जो एक ऑक्सीजन धुकधुकाती हुई सांस भर रहा था भारतीय हॉकी में, उसको वेंटिलेटर पे ले गए थे, उसको फिर से जिंदा कर दिया हरमनप्रीत और उनके टीम के सदस्यों ने।
मतलब आज के इस मैच में कौन सा ऐसा मूवमेंट आपको लगा कि जहां लग रहा था कि शायद कहीं अब भारत पर गोल ना हो जाए और शायद कहीं ये दो दो बराबर ना हो जाए और हमें पेनल्टी शूट आउट में जाना पड़े।
देखिए अंतिम क्षणों में गोल खाने की जो आदत पड़ गई थी, उस आदत को बहुत हद तक तोड़ा है और छुड़वाया है भारतीय टीम से। भारत के कोच फुलटन ने, सलाम करता हूं मैं उनको और उनके साथ जो अपटन थे, पैडी अपटन, जो भारत के खिलाड़ियों की मानसिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, जिनको दक्षिण अफ्रीका के वो भी हैं, कोच फुलटन ने रखा था। और जिस तरह से उन्होंने वहां अंतिम क्षणों में पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलने नहीं दिया, तब्दील नहीं होने दिया, मुझे लग रहा था। और एक बार तो आपने देखा कि रेफरल हुआ, पेनल्टी स्ट्रोक की मांग हुई
जी।
और जब पेनल्टी स्ट्रोक की मांग हुई तो कलेजे की धड़कन मेरी बहुत बढ़ गई और मैं सोचने लगा कि अब क्या होगा। लेकिन नहीं, आज का दिन तो भारत के नाम था, आज का दिन श्रीजेश के नाम था, आज का दिन हरमनप्रीत के नाम था और पूरी हॉकी टीम ने यह दिन विनेश फोगाट के नाम किया है
जी। मैंने आपको लगता है कि भले ही हमारे इस तमगे का जो कलर है वो कांस्य है या फिर स्वर्ण भी हो सकता था, क्या इस तरह का जो टीम कॉम्बिनेशन है, जो 11 खिलाड़ी इस समय जीत के लिए खेले थे, शायद हम आने वाले दिनों में इसको और मजबूत कर पाएंगे?
बिल्कुल, हरमनप्रीत ने हर जीत के बाद ये कहा, जब भी उनकी तारीफ की गई कि ये मेरी नहीं टीम की जीत है, ये मेरा नहीं टीम का एफर्ट था, टीम का प्रयास था, टीम की कोशिश थी। एक टीम लीडर को जब टीम को अपने एक सूत्र में पिरोकर ले चलने की इस प्रकार की आदत पड़ जाती है तो फिर हार मुंह छुपाए फिरता है।
बड़े इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय हॉकी टीम को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। और चर्चा में कहीं ना कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि ये कांस्य पदक है कि नहीं, हमने तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ण पदक जीत लिया है।
देखिए जहां से हम ऊपर आए, टोक्यो में आशा की एक नई किरण आई और लगा कि एक बार फिर धरती पर सूरज खिलेगा हॉकी का, भारत की धरती पर, और अब उसका प्रकाश फैल रहा है। और अब हम जब स्वर्ण की उम्मीद कर रहे हैं, यही इस बात का द्योतक है कि भारतीय हॉकी का पुनर्जन्म हो चुका है।
और मले आज देर रात सबकी नजरें होंगी भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा पर, जिनसे हमें पूरी उम्मीद है कि वो स्वर्ण पदक लेकर आएंगे। लेकिन अब आप एक एनालिसिस करके बताइए कि इनको किन खिलाड़ियों से इस समय चुनौती मिलने की आशंका है और कहां से ये पार पा सकते हैं।
देखिए जिस प्रकार से इन्होंने क्वालिफाइंग राउंड में पहला ही भाला फेंका था, 89 को पार कर गए थे, वहां पर ही लगने लगा था कि इस बार तो ये ठान कर आए हैं कि अब देर नहीं
जी,
अब स्वर्ण दोबारा आएगा। और बाकी के सारे जो जैवलिन थ्रोअर्स थे और पाकिस्तान के जो प्रतिद्वंद्वी हैं इनके, वो चाहे वो ग्रेनाडा के थे, कहीं के थे, सब फीके साबित हो रहे थे, फीके दिख रहे थे। आज सिर्फ और सिर्फ इनको अपने नर्व्स पर कंट्रोल करना होगा, अपने स्नायु तंत्र पर नियंत्रण रखना होगा, एकाग्रता भंग नहीं होनी चाहिए। और आज इन्होंने अगर दूसरा नया रिकॉर्ड भी बना दिया तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, दूसरा स्वर्ण नीरज की झोली में आने के लिए प्रतीक्षारत है।
यह मुकाबला रात 11:55 से खेला जाएगा और आप बने रहिएगा रात 11:55 तक, अगर आपको वो स्वर्णिम क्षण अगर आपको देखने हैं जब नीरज चोपड़ा सबसे दूर तक भाला फेंकेंगे। एक बात और जहन में आती है कि 6 बार भाला फेंकेंगे और अगर पहले ही अटेम्प्ट वो 90 को क्रॉस कर जाते हैं, जो कि उम्मीद जताई जा रही है, क्या लगता है आपको कि बाकी के 6 अटेम्प्ट में वो और से ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे?
देखिए वो तो कोशिश करेंगे ही, लेकिन अगर 90 से ज्यादा उन्होंने फेंक दिया हाँ। तो बाकी जितने भी उनके प्रतिद्वंद्वी हैं उन सबका मनोबल बहुत गिर जाएगा और जीत वहीं सुनिश्चित हो जाएगी
जी।
लगातार भारत ने बहुत सारे खेलों में इस बार अपने आप का जौहर दिखाया। अब हम मीराबाई चानू की बात करते हैं, हम हॉकी की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो चौथी पोजीशन पर रहे हैं। डू यू थिंक कि जो चौथी पोजीशन है वो भी एक तमगे में तब्दील हो सकती थी, कहां चूक रह गई?
किस्मत की खूबी देखिए कि टूटी कहां कमंद, दो चार हाथ तक लबे बाम रह गए। और ये चौथा जो स्थान है ना, बड़ा बड़ी कसक पैदा करता है, एक लंबी लंबे समय तक आपके मन में एक छाप छोड़ जाता है ऐसी, जिसको आप याद कर दुखी होते रहते हैं। चाहे वो फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह हो, या गोल्डन गर्ल पीटी उषा हो, या वहां से लेकर अर्जुन बबूटा हो, या फिर मीराबाई चानू हो, या मनु भाकर हो, अभी तक इस ओलंपिक के पहले 17 ऐसे खिलाड़ी थे जो चौथे स्थान पर रहे थे। और पेरिस में 6 खिलाड़ी हम देख चुके हैं जो अब चौथे स्थान पर रहे हैं, मगर नहीं खिल पाए, जो वो भी चमन के जाने मन तो ही है ना
जी।
अगर चौथा स्थान भी मिला तो बाकी दुनिया के अनेक अनगिनत खिलाड़ियों को पीछे छोड़कर एक आध कदम अगर पोडियम से आप दूर रह गए तो हौसला बढ़ता है, टूटता नहीं है, खासकर ऐसे खिलाड़ियों का जो आने वाले समय में, जिनकी अभी उम्र बची है, जो फिर से लॉस एंजलिस में और दूसरी जगहों पर आने वाले समय में जब विश्व प्रतियोगिताएं होंगी उनमें हिस्सा लेंगे।
मले आज ही एक और बड़ा उलटफेर हुआ जब अमन सहरावत पुरुषों की 57 किलोग्राम के फ्री स्टाइल के कुश्ती के सेमीफाइनल में पहुंच गए और उन्होंने उम्मीद जता दी है कि एक बार फिर हम एक पदक तो जीत ही सकते हैं और आज लगभग 9:45 उनका मुकाबला होना है।
और टेक्निकल पॉइंट्स पे जो जीत हुई ना, देखने लायक थी नीरज जी, ऐसा जकड़ के उन्होंने उसके पैर को पकड़ा जो विश्व चैंपियन रह चुका था, और उसके बाद 3 पलटनियां उसको दिया, एक के बाद एक। और शुरू में तो एक पैसिविटी का पॉइंट उनको मिला था, और अंत में जब पॉइंट्स मिले तो लास्ट के 2 पॉइंट्स पर उसको चैलेंज किया गया, लेकिन वो चैलेंज बेकार था। उन्होंने तो उसको ऐसा जकड़ लिया था और ये सोच लिया था कि आज इनको बार बार मैट चटाऊंगा, और वही चटाते रहे वो, 3 बार उन्होंने उनको लपेटा उसमें।
और आज रात 9:45 अब 140 करोड़ की जनता पूरी शिद्दत के साथ जब उनको देख रही होगी, तो डू यू थिंक कि विनेश फोगाट का जो दुख था उसे हम भूल पाएंगे जब हमारा खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे?
विनेश फोगाट का दुख तो भारत की ये पीढ़ी कभी नहीं भूल पाएगी
जी,
ये सोचने की बात है। लेकिन हां ये जरूर है कि थोड़ा बहुत मरहम का काम करेगी वहां अगर इन्हें कोई पदक मिलता, और मिलेगा, हमें लगता है सेमीफाइनल में पहुंच जाएंगे। हालांकि मुकाबला बहुत कड़ा है, ये मैं आपको बता दूं कि जो उनके सामने प्रतिद्वंद्वी उनका है
जापान के खिलाड़ी,
जापान के खिलाड़ी हैं और वो चैंपियन खिलाड़ी हैं, और उनको हराने के लिए इनको पूरी ताकत लगानी होगी, और थोड़ा सा समय इनको बीच में मिला है जब ये चाहेंगे कि हमारी जो एनर्जी है वो रीगेन हो और उसको देखेंगे, तो मुझे लगता है कि ये मुकाबला भी बहुत ही शानदार होगा, कांटे का होगा। मगर मुझे भारतीय पहलवान का जो मूव्स थे ना इसमें अमल के, वो देखकर लगता है कि इनके हौसले बहुत बुलंद हैं।
अमन मले, आप देखिए अमन का ही नाम लगातार आ रहा है। मले, हम चलते चलते आपसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि ये जो जितने भी भारतीय खिलाड़ियों का दल गया, 117 खिलाड़ी गए हैं, कुछ हारे हैं कुछ जीते हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे?
कुछ नहीं, मैं तो ये कहूंगा कि 117 चेहरे वहां जब पहुंचे, जिसमें से 61% नए चेहरे थे जिन्होंने ओलंपिक एरिना को कभी देखा नहीं था, जहां जाकर हमारा और आपका सबका दिल घबराने लगता है, वहां जाकर जब उन्होंने अपने देश का मान बढ़ाया है, नई उम्मीदें पैदा की हैं, और ये ऐसे उदीयमान सितारे हैं जो भारत के खेल क्षितिज पर जगमगाते रहेंगे, जुगनू बनकर नहीं बिजली बनकर गिरेंगे पूरी दुनिया पर आने वाले समय में, तो पदकों की झड़ी लगने वाली है।
मले, हमसे बात करने के लिए, अपनी विशेष राय साझा करने के लिए, ये संदेश देने के लिए तमाम भारतीय खिलाड़ियों को, भले ही उन्होंने ओलंपिक में पदक जीता हो या ओलंपिक में शिरकत की हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
चलते चलते हम अपने श्रोताओं को बता दें कि भारतीय हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हरा दिया है, ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। 50 साल बाद ओलंपिक में लगातार भारत की ये दूसरी जीत है। आज के इस अंक में बस इतना ही, मुझे यानी नवीन को दें इजाजत, नमस्कार।